आयशा ने जब से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था तब से वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही थी। यही वजह थी कि वो राधिका के ईमेल को एक्सेस कर सकती थी। इस बात का फायदा उठाते हुए आयशा ने राधिका के ईमेल से नक्श की भेजी हुई समस्याओं को इशिका के पास भेज दिया। उन्हें देखते ही इशिका समझ गई कि ये आयशा है। इशिका ने तुरंत आयशा के मेल का जवाब भेज दिया था। जैसे ही आयशा ने उसे खोला और देखा, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। इशिका ने मेल में लिखा था, मैं सिर्फ सिंघानिया इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम सॉल्व के लिए हूँ, राजवंश एम्पायर की नहीं। उम्मीद है आगे से आप मुझे उनके इश्यूज नहीं भेजेंगी। मेल पढ़ने के बाद आयशा हैरान रह गई। उसने पुराने मेल को पढ़ा तो यही पाया कि डॉक्टर मर्चेंट बिना किसी सवाल जवाब के हमेशा राधिका के भेजे हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते थे। उनके बीच होने वाली बातचीत काफी फॉर्मल थी। इससे साफ था कि डॉक्टर मर्चेंट राधिका की काफी इज्जत करते थे, लेकिन आज उन्होंने आयशा का भेजा हुआ काम करने से साफ मना कर दिया था। नक्श ने महसूस किया कि आयशा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई है। उसने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर तुरंत पूछा, क्या हुआ आयशा, तुम परेशान लग रही हो, डॉक्टर मर्चेंट ने क्या कहा? आयशा ने तुरंत खुद को संभाला और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, डॉक्टर मर्चेंट ने इसे चेक कर लिया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा पर वो ये कर देंगे। आयशा के कहते ही नक्श ने राहत की सांस ली। वो हड़बड़ाकर बोला, हाँ, वो प्रॉब्लम थोड़ी हार्ड है और उसे टाइम लगेगा, लेकिन मैंने ग्रुप वन के लोगों से शर्त लगाई है कि मैं इसे जल्द ही सॉल्व करवा दूंगा, ऑलमोस्ट फ्राइडे तक। आई होप तब तक डॉक्टर मर्चेंट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। नक्श ने बात को बदल दिया था। वो ये कहने जा रहा था कि उसने इशिका से शर्त लगाई है पर आयशा को बुरा न लगे इसीलिए उसने ग्रुप वन का नाम लिया। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर देंगे, आयशा ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा। आयशा समझ गई थी कि नक्श इशिका का नाम लेने जा रहा था। इस बात ने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया पर उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। बात को बदलने के लिए नक्श ने कहा, अच्छा राधिका आंटी अब कैसी हैं? वो पहले की तरह बेहोश तो नहीं हुई थी ना? नहीं, वो ठीक है नक्श, देखते हैं डॉक्टर उन्हें कब तक डिस्चार्ज देते हैं, आयशा ने जवाब दिया। नक्श ने कुछ देर उससे इधर उधर की बातें की और फिर वहां से राजवंश विला पहुंच चुका था। पूरे रास्ते वो इशिका के बारे में सोचता रहा, वो उसके दिलो दिमाग से निकलती ही नहीं थी। नक्श जब राजवंश विला पहुंचा तब उसे गार्डन एरिया में उसके मॉम डैड नकुल और उर्वशी दिखाई दिए। नक्श उनके पास चला गया। काफी दिनों के बाद नक्श ने अपने डैड को रात के वक्त घर देखा था। नक्श को देखते ही नकुल ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने डॉक्टर मर्चेंट को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा और कंपनी में तुम्हारी पोजीशन अच्छी होगी, देखना डॉक्टर मर्चेंट के सहारे तुम बहुत आगे तक जाओगे। जब से नक्श ने कंपनी ज्वाइन की थी तब से लेकर आज तक पहली बार उसने नकुल के मुंह से अपनी तारीफ सुनी थी। वो थोड़ा हैरान था, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी डैड, मैं बहुत मेहनत करूंगा और जल्द ही हम अपनी पोजीशन फिर से हासिल कर लेंगे, देखना अभिमन्यु चाचू से ज्यादा शेयर हमारे पास होंगे। अब मुझे तुमसे ही उम्मीद है, नकुल ने जवाब दिया और फिर वहां से अपने बेडरूम की तरफ जाने लगे। ये नकुल के बाहर जाने का टाइम होता था। बाहर वो अपनी रातें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताते थे लेकिन आज वो घर पर ही थे। ये देखकर नक्श और उर्वशी दोनों ही हैरान थे। आज तुम्हारे डैड अपने उस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के पास नहीं जा रहे हैं, बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है बेटा, प्लीज तुम जो भी कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखो, तुम्हें अपनी सौतेली बहन से बेहतर बनना है ताकि हम तुम्हारे डैड को भी फिर से हासिल कर सके, उर्वशी ने थोड़ा इमोशनल होकर कहा। हम सब कर लेंगे मॉम, देखा जाए तो इन सब में आयशा का बहुत बड़ा रोल है, ये सब उसी की वजह से हुआ है, नक्श ने आयशा की तारीफ करते हुए कहा। उर्वशी ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाकर जवाब में कहा, सही बोल रहे हो, हालांकि वो दादी को इम्प्रेस नहीं कर पाई लेकिन डॉक्टर मर्चेंट को बुलाकर उसने वाकई काफी अच्छा काम किया है। चलो अब बहुत बातें हो गई, मैं बेडरूम में जा रही हूँ, बहुत टाइम बाद तुम्हारे डैड घर पर रुके हैं। उर्वशी जाने से पहले नक्श के फोरहेड पर किस किया और फिर खुश होते हुए बेडरूम में चली गई। उर्वशी का नकुल के लिए प्यार देखकर नक्श के गुस्से में मुठ्ठियां कस गई थी। चलो इशिका को छोड़कर आयशा के पास जाने का कुछ तो फायदा हुआ, उसके जरिए ज्यादा कुछ ना सही लेकिन हम अपनी पोजीशन को फिर से हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर मर्चेंट का राजवंश एम्पायर के साथ जुड़ना भी हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, नक्श ने मन ही मन कहा। आयशा के साथ होने के ख्याल भर से ही नक्श को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में तुरंत इशिका का चेहरा घूम गया। उसने खुद को शांत करके कहा, रही बात इशिका की तो वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे आज नहीं तो कल हासिल कर ही लूंगा, उसे अपने पास रहने के लिए मना लूंगा। उसके बाद नक्श भी सोने के लिए अपने कमरे में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ इशिका और अभिमन्यु वसुधा के साथ उसके कमरे में थे। इशिका काउच पर बैठकर लैपटॉप में लगी हुई थी, तभी अचानक उसे छींक आई। इशिका ने परेशान होकर बिना दूसरी तरफ देखे पानी के कप की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने कप को अपने होठों से लगाया तो महसूस किया कि उसमें पानी नहीं था, इशिका ने उसे वापस रख दिया था। वो काम करने में इतना उलझी थी कि उसने उठकर पानी लेना भी जरूरी नहीं समझा। इशिका वापस अपने लैपटॉप में लगी थी, तभी उसे अपने आंखों के सामने पानी का कप दिखा। उसने देखा अभिमन्यु उसके लिए पानी लेकर खड़ा था। इशिका ने पानी लिया और धीरे से कहा, थैंक यू मिस्टर राजवंश। कोई बात नहीं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, सिर्फ आपको पानी ही दिया है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया था। वो भी लैपटॉप में काम कर रहा था और बीच बीच में इशिका को भी देख रहा था। वसुधा को नींद नहीं आ रही थी, उसकी नजरें उन दोनों पर ही थी। वसुधा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर ये दोनों ऐसे ही प्यार से रहें तो जल्द ही इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएगी और मुझे अपने परपोते का चेहरा देखना नसीब होगा। लेकिन मैं इनके बच्चों का नाम क्या रखूंगी, लड़का होगा या लड़की, मुझे एक अच्छा नाम सोचना होगा। वसुधा वहां बैठकर ख्याली पुलाव बनाने लगी। वसुधा ने अपना मोबाइल निकाला और ऑनलाइन नाम को सर्च करने लगी। वहीं इशिका अपने कामों में बिजी थी, तब बिल्लू उसके पास आया और उसके पैरों को चाटने लगा। इशिका समझ गई थी कि वो बोर हो रहा है, इसीलिए ऐसा कर रहा था। इशिका ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो पहले वो वसुधा के पास गया और बाद में अभिमन्यु के पैरों को चाटते हुए वहीं पर सो गया था। अगले दिन इशिका तैयार हुई तो उसने देखा कि अभिमन्यु भी तैयार हो चुका था। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था। कल इतनी चोट लगने के बावजूद उसके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन के भाव नहीं थे। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा तो उसने ब्राउनिश येलो कलर का वन पीस स्लीवलेस ड्रेस पहना हुआ था। आप तैयार हैं तो हमें साथ में चलना चाहिए मिस सिंघानिया, अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर पूछा, जिस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। अब इशिका अभिमन्यु के साथ इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं करती थी तो वो उसके साथ गाड़ी में जाने के लिए तैयार थी। पृथ्वी ने उन दोनों को फिर से साथ में देखा। पूरे रास्ते अभिमन्यु और इशिका ने बात नहीं की, लेकिन उनके बीच काफी कुछ बदल गया था। इशिका ने अभिमन्यु को बाय कहा और फिर अपने डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंची, उसे नक्श कॉफी के कप के साथ दिखाई दिया।
इशिका को देखते ही नक्श उसके पास आया और बोला, आज रात न्यू एनर्जी डेवलपमेंट को लेकर एक इवेंट है जहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल होंगे। काफी बड़ी पार्टी है, वहां डॉक्टर मर्चेंट भी आने वाले हैं। तो मैं क्या करूं, इशिका ने रूखे तरीके से पूछा। राजवंश एम्पायर को भी इन्विटेशन मिला है, खास करके R&D डिपार्टमेंट को। तुम चाहो तो आज रात मैं तुम्हें लेकर जा सकता हूँ, ये तुम्हारी फ्यूचर में काफी हेल्पफुल रहेगा, नक्श ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इशिका ने गुस्से से उसे देखा और सीधे सीधे जवाब में कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू सो मच जो मुझे पूछने का एहसान किया तुमने। अपना जवाब देने के बाद इशिका वहां से चली गई। इशिका के इनकार करने पर नक्श वहां गुस्से में खड़ा उसे चाहते हुए देख रहा था। गुस्से से उसका चेहरा सख्त हो गया था। तभी उसके कानों में रोहन की आवाज आई। रोहन अभी अभी आया था। रोहन ने उसके पास आकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक पार्टी इन्विटेशन के जरिए उसे वापस हासिल कर पाओगे? बहुत ही बुरा प्लान है, इशिका ऐसी लड़की नहीं है। नक्श ने रोहन की तरफ देखकर कहा, रोहन, अगर सच में तुम उसका भला चाहते हो तो तुम्हें उसे समझना चाहिए। गुस्से में आकर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। तुम भी जानते हो कि ये पार्टी कितनी ज्यादा जरूरी है और इससे इशिका का फायदा हो सकता है। अगर ऐसा है तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, रोहन ने जवाब दिया। रोहन को भी इस तरह की पार्टी के इन्विटेशन मिलते रहते थे क्योंकि वो राजवंश एम्पायर का एक खास एम्प्लॉय था, ऊपर से काफी काबिल भी। रोहन की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। नक्श ने आगे कुछ नहीं कहा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वहीं शाम तक इशिका पूरे दिन ऑफिस में काम करती रही। जब ऑफिस खत्म होने का टाइम आया तो रोहन ने इशिका के पास आकर कहा, आज रात मुझे कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? ठीक है, इशिका ने तुरंत हाँ कह दिया था। उसने अभिमन्यु को मैसेज किया कि आज रात वो ओवरटाइम करने वाली है, वो साथ जाने के लिए उसका इंतजार ना करे। रोहन ने इशिका के लिए ड्रेस मंगवा दिया था। पार्टी में पहनने के लिए उसने व्हाइट कलर का वन पीस घुटनों तक का स्लीवलेस फ्रॉक पहना हुआ था जो बैकलेस था। जल्दी वो उस इवेंट में पहुंच चुके थे जहां नक्श इशिका को ले जाने की बात कर रहा था। पार्टी के अंदर एंट्री लेने से पहले रोहन ने इशिका से कहा, इस तरह के इवेंट काफी खास होते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल होते हैं। तुम काफी टैलेंटेड हो तो फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगा। डॉक्टर मर्चेंट के भी आने की बात है, लेकिन वो इस तरह की पार्टीज में आना कम पसंद करते हैं। अगर वो यहाँ आए तो मैं तुम्हारी मुलाकात उनसे जरूर करवाऊंगा, लेकिन तुम ज्यादा उम्मीदें मत रखना। इशिका ने बात पर हामी भरी। उसे मन ही मन हंसी आ रही थी। रोहन उसे उसी से मिलने की बात कह रहा था। इशिका को वाकई ऐसी पार्टी में आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि दिशांक यहाँ जरूर आएगा। काफी टाइम से वो दिशांक से मिली नहीं थी। बस यही सोचकर इशिका चुपचाप रोहन के साथ आगे चली गई। जैसे ही वो लोग आगे पहुंचकर अपना इन्विटेशन दिखाने लगे, डोर कीपर ने रोहन को वहीं पर रोक लिया था। उसने रोहन से कहा, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है मिस्टर रोहन, लेकिन आज राजवंश एम्पायर की तरफ से पार्टी में शामिल होने वाले लोगों में आपका नाम नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, रोहन ने हैरानी से पूछा। इस तरह की पार्टी के इनविटेशन उसे मिलते रहते थे। आज तो वो राजवंश एम्पायर की तरफ से जा रहा था, लेकिन उसके अलावा भी रोहन को पर्सनली इस तरह की पार्टी के इनविटेशन मिलते थे। फिर आज उसका नाम बहाना होना उसे आश्चर्य में डाल रहा था। रोहन वहां खड़े होकर सोच ही रहा था कि तभी नक्श शैंपेन के ग्लास के साथ वहां पर आया। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, रोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा ग्रुप वन के लोगों के पास काफी सारा काम है, तो मैंने तुम्हारा नाम हटवा दिया था। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा नाम वापस जोड़ा जा सकता है, तो तुम जा सकते हो। ये नक्श की हरकत थी। जब रोहन ने उसे ईशिका को पार्टी में ले जाने की बात कही थी, तभी से उसने ये प्लान बना लिया था। नक्श की इस हरकत पर रोहन को काफी गुस्सा आया। वो चिढ़कर बोला, और तुम्हें किसने हक दिया मेरे बिहाफ में मना करने का? तुम मेरे डिसीजन नहीं ले सकते हो। मैं ले सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे वो पोजीशन हासिल है। मैं जूनियर मैनेजर हूँ। किसे पार्टी में शामिल होना है, किसे नहीं, इसका डिसीजन मुझे लेना होता है। और तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम्हें आज जो पावर और पोजीशन मिली है, वो राजवंश एम्पायर की वजह से मिली है। नक्श ने उसे सख्ती से जवाब दिया। रोहन को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। राजवंश एम्पायर उसने ज्वाइन जरूर कर रखा था, लेकिन किसी की सिफारिश के दम पर नहीं। उसने अपनी पोजीशन को अचीव किया था। कंपनी में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी इंसल्ट करने की हिम्मत करता था, लेकिन नक्श ने अपनी नई मिली पोजीशन के दम पर उसे सबके सामने बेइज्जत किया था। नक्श ने रोहन की तरफ देखते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, यहाँ सभी रिस्पेक्टेड लोग इकट्ठा हैं। क्या तुम चाहते हो कि इतने लोगों के सामने तुम्हें सिक्योरिटी यहाँ से धक्के मारकर निकाले? तुम्हें एक फ्री की एडवाइस देता हूँ कि यहाँ से चले जाओ। रोहन से बात करने के बाद नक्श ने ईशिका की तरफ देखा, जो शांति से उनका ड्रामा देख रही थी। नक्श ने अपने कदम ईशिका की तरफ बढ़ाए और बोला, तुम्हें क्या अलग से समझाना पड़ेगा? अगर तुम्हें अंदर जाना है तो मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। मेरे बिना तुम अंदर नहीं जा सकती ईशिका सिंघानिया। क्या सच में ऐसा है नक्श राजवंश? ईशिका ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। वो आगे कुछ नहीं बोली और उसने दिशांक का भेजा हुआ इन्विटेशन सिक्योरिटी गार्ड को दिखा दिया। नक्श उसकी तरफ देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था और इसकी इस बेवकूफी पर मन ही मन हंस रहा था, लेकिन अचानक उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई जब गार्ड ने उसे अंदर जाने की परमिशन दे दी थी। डेली चैप्टर आ रहे हैं, तो प्लीज आप भी थोड़ा एक्टिव रहा करें। पढ़कर अच्छी अच्छी समीक्षा जरूर करें।